आविर्भाव दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम
उनका कुछ चरित्र श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी भगवान कृष्ण के सबसे प्रथम विस्तार हैं और गुरु तत्व हैं। बलराम जी गुरु तत्व हैं, उनके द्वारा ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है श्री कृष्ण की सेवा करने की। तो आज के दिन जो है हम विशेष प्रार्थना करें बलराम जी से कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे कृष्ण की सेवा में लगें। तो गर्ग संहिता से मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवान बलराम जी आप जानते हैं देवकी के साथ में गर्भ में आए और देवकी को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुआ। हर्ष किस बात से? बालक बहुत तेजस्वी है, बहुत दिव्य है। और शोक किस बात से? कि जैसे 6 बालक कंस ने मार डाले हैं, इसी प्रकार से इसको भी कंस मार डालेगा। हर्ष शोक दोनों प्राप्त हुए। साक्षात अनंत देव भगवान जो है देवकी के साथ में गर्भ में आए और योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। मथुरा वासियों को ये रहस्य पता नहीं चला। उन्होंने क्या माना कि देवकी का गर्भ गिर गया कारण कंस के भय से। पापी कंस के भय से देवकी का गर्भ गिर गया। तो कंस की ही निंदा लोग करते थे, हालांकि सामने तो नहीं करते थे, उसका बहुत भय था, आतंक था, लेकिन अपने मन के अंदर भी सोचते थे कि कंस के कारण जो है देवकी का गर्भ गिर गया है। और ब्रज में जो है जब रोहिणी के गर्भ में आए बलराम जी तो उसके 5वें दिन उनका जन्म हुआ। रोहिणी के गर्भ में जब बलराम जी आए तो 5 ही दिन बीते थे। स्वाति नक्षत्र था, बुधवार का दिन था। रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। तो हम लोग दोपहर तक उपवास करते हैं, इसका कारण क्या है कि दोपहर जब भगवान का जन्म होता है तब तक हम उपवास करते हैं। देवता फूल बरसा रहे थे और बादल जल के बिंदु बिखेर रहे थे। उस जन्म वेला में प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद का भवन जगमगा रहा है, कोई ये सब लाइट वर्क नहीं हुआ, लाइट वर्क उनके द्वारा उनके शरीर से निकल रहा है। नंद महाराज का पूरा घर जो है जगमगा रहा है बलराम जी के शरीर की अंग कांति से। अथ ब्रजे पंच दिने सुभाद्री स्वातोच सस्यम चसिते बोधे चाम उच्चैर ग्रह पंचधिराव्रते चाम लग्ने तुलाखे दिन मध्य देशी सुरेशु वर्षत्सु सुपुष्प वर्षम घनेशु मुंचत्सु चमारी बिंदु बभूव देव वसुदेव पत्न्याम विभावसयन नंद गृहम सुभासम। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को हरिबोल ब्राह्मणों को 10,00,000 गौएं दान दी। ब्राह्मणों को 10,00,000 गौएं दान दी नंद महाराज ने। आज के दिन बलराम जी का जन्म हुआ और गोपों को बुलाकर मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। निपुण गायकों के संगीत के साथ और उत्तम गान विद्या में निपुण जो कलाकार थे उनके द्वारा उत्सव कराया नंद महाराज ने। नंदो अपि कुर्वन् शिशुजात कर्मे ददौद्युजेभ्यो नियुतं गवां च गोपां समाहूय सुगायकानां रावेर्महामङ्गलमातनोति। अब बलराम जी का दर्शन करने के लिए कौन आए? बड़े बड़े ऋषि लोग आए। किसने खबर दी उनको? उनको खबर मिल गई भगवान के आविर्भाव का की। देवल ऋषि, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मैं नारद महाराज जी स्वयं बताते हैं कि मैं भी वहां पहुंचा और सबके साथ में व्यासदेव भी वहां आकर के बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद महाराज ने सब ऋषि मुनियों को बैठाया और स्वागत किया। जय पायनो देवल देवरात वशिष्ठ वाचस्पति भीर्मया च आगत तत्रैव समासित अभूम पाद्यादि भीर्नंद कृत प्रसन्न। अब नंद जी पूछते हैं महर्षियों से, महर्षि लोग ही रहस्य बता सकते हैं इस बालक का। तो नंद जी महर्षियों से पूछते हैं, हे महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई बालक देखने में नहीं आता है। अद्भुत लक्षण है इस बालक के। हे महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ ये मुझे बताइए। सुंदरो बाल कहां कोयम दृश्यो यत समा क्वचिन कथम पंचे दिनान जातं तन्मे ब्रूहि महामुनि। तो व्यास जी बोले, हे नंद जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेष नाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में पशुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। हे नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। अहो भाग्यम तुते नंद शिशु से सनातन देवक्याम वसुदेवस्य जातोयम मथुरापुरी कृष्णेच्छया तदुदराम प्रणीतो रोहिणीम सुभाम नंदराजे त्वया दृश्यो दुर्लभो योगिनामपि। मैं महामुनि वेद व्यास इस बालक के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। कितनी दूर से चल करके आया हूँ मैं इस बालक का दर्शन करने के लिए, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देव का हम सबको दर्शन कराओ। अच्छा, अभी तक दर्शन नहीं कराया, अभी तो स्वागत किया है। और नंद जी पूछते हैं कि बालक कौन है, तो बताया उन्होंने कि बालक कौन है और अब हमें दर्शन कराओ। फिर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन कौन है, सत्यवती नंदन कौन है, वेद व्यास जी। सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया पालने में, भगवान बलराम लेटे हुए हैं, तो व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। अथनंदा शेषम दर्शियामास विस्मित दृष्ट्वा प्रेंखल स्थितम प्राह नत्वा सत्यवती सुतः। अब व्यास जी की स्तुति है। व्यास जी कहते हैं, हे भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं और कामपाल हैं, यानी सब के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आपको नमस्कार है, आप साक्षात अनंत देव हैं, शेष नाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। देवाधिदेव भगवान कामपाल नमोस्तुते नमो नंताय शेषाय साक्षात रामायते नमः। आप कई नामों से स्तुति कर रहे हैं व्यास जी। एक नाम है धरणीधर, आप धरणीधर हैं, ठीक है, क्योंकि अपने 1000 फणों में से एक फण पर उन्होंने पृथ्वी को धारण किया है और वो पृथ्वी उनके किस फण में है ये उनको पता नहीं चलता। जैसे आपके सिर में सरसों का दाना अगर कोई डाल दे तो आपको पता नहीं चलेगा, है ऐसे पूरा भूमंडल उनके किस फण में रखा हुआ है उनको पता नहीं चलता है। तो ये धरणीधर हैं, पूर्ण स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, हाथ में हल धारण करने वाले 1000 मस्तक से सुशोभित और संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। देवाधि देव भगवन कामपाल नमोस्तुते नमो नंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शीरपाणये सहस्त्र शिरसे नित्यम नमा संकर्षणायते। हे रेवती रमण, रेवती रमण ठीक है, रेवती रमण मतलब रेवती के पति, आप ही बलदेव और श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलम्बासुर के नाशक हैं, हे पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा कीजिए। रेवती रमण तुम मैं बलदेव च्युताग्रज हलायुधा प्रलम्बघना पाहि माम पुरुषोत्तम। तो आपको पता है प्रलम्बासुर का वध कब किया था बलराम जी ने? प्रलम्बासुर का वध कब किया था बलराम जी ने? हाँ हाँ, जब वो एक सखा बाल सखा का रूप धारण करके और मिल गया कृष्ण बलराम के बालकों के साथ में और कृष्ण के दल में हो गया। और जब बलराम जी का दल हारा और कृष्ण का दल जीता तो ये हाँ तो इसने बलराम जी को अपने पेट में बिठाया। तो जहां जिस वृक्ष तक ले जाना था वहां तो ले गया, लेकिन वहां उतारा नहीं बलराम जी को, बल्कि और आगे बढ़ गया और फिर उसने अपना रूप धारण किया। और इसका इतना बड़ा रूप था दो योजन का मतलब है 16 मील, हाँ 16 मील ऊंचा, सोचो 16 मील ऊंचा ये प्रलम्बस होता है दो योजन। तो फिर बलराम जी ने जब देखा कि ये तो असुर है तो फिर मारा एक घूसा सिर में और गिराया उसको। और जब गिरा तो कितनी भारी आवाज हुई होगी सोचिए, 16 मील ऊंचा प्रलम्बासुर था। तो प्रलम्बासुर के नाशक हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप बल हैं बलभद्र हैं और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तालध्वज, इनको तालध्वज कहा जाता है क्योंकि इनका जो रथ है उसकी विशेषता क्या है कि इनके रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है, ताल ध्वज। जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं गरुड़ ध्वज, तो कृष्ण के रथ की ध्वजा में चिन्ह है गरुड़ जी का, है ना, गरुड़ ध्वज। अर्जुन को कहते हैं कपित ध्वज, अर्जुन के रथ की ध्वजा का चिन्ह है बानर, बानर का चिन्ह है। तो दूर से ही रथ को जो है ना पहचाना जाता है, तो फिर रथ में बैठे व्यक्ति को पहचाना जाता है कि भाई ये होना चाहिए। ध्वजा से रथ की पहचान होती है और रथ से फिर रथी की पहचान होती है कि रथ किसका है, कौन व्यक्ति आया है। आपको नमस्कार है, आप नील वस्त्रधारी गौरवर्ण और रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिणेयाय ते नमः। अब और भी नाम व्यास जी बोलते हैं बलराम जी के, आप ही धेनुकारी हैं। धेनुकारी मतलब अरे माने शत्रु, और धेनु कौन है? धेनुकासुर। धेनुकासुर किस रूप में था? गधे के रूप में था। कहां पर था? ताल वन में। किसका वध किया था भगवान बलराम जी ने? धेनुकारी कहलाते हैं। फिर मुष्टिकारी, मुष्टिकारी कहलाते हैं। मुष्टिक कंस का पहलवान था, है ना, तो मुष्टिकारी। कुंभांडारी, कुंभांड बाणासुर का मंत्री था, है ना, तो कुंभांड से युद्ध किया था बलराम जी ने, जब बाणासुर की सेना के साथ भगवान कृष्ण की सेना का युद्ध हुआ था, कुंभांडारी। रुक्मेरी, रुक्मी अरी, रुक्मी के शत्रु बलराम जी हैं। रुक्मी कौन है? रुक्मिणी देवी का भाई था, है ना, तो कृष्ण से बहुत द्वेष करता था और बलराम जी से द्वेष करता था। और फिर जब पासा खेल रहे थे तो हार गया था, लेकिन तो अभी वो अन्यायपूर्वक बोल रहा था कि आप हारे हो बलदेव जी, आप हारे हो, और फिर और निंदा करने लगा कि अरे आप जो है पासों से खेलना क्या जानो, शस्त्रों से, तलवार से और पासों से खेलना तो क्षत्रिय लोग जानते हैं, तुम लोग तो ग्वाले हो, है ना। तो फिर बलराम जी ने गुस्से से उसको मार डाला। तो रुक्मिणी, फिर कूपकर्णारी बलराम जी को कहते हैं कूपकर्ण। कूपकर्ण भी बाणासुर का मंत्री था, कुंभांड और कूपकर्ण, तो इनसे युद्ध किया था बलराम जी ने। कूटारी, बलराम जी को कहते हैं कूटारी, कूटारी, कूट भी चाणूर, मुष्टिक, कूट, है ना, तो मुष्टिक और कूट का वध बलराम जी ने किया था। कूटारी। बलबलारी, बलबल के शत्रु। बलबल कौन है? नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग थे तो उनके यज्ञ को जो है वो दूषित करता था, प्रत्येक पर्व में आकर के खून और जो है पीव हड्डी की वर्षा करता था, उनके स्थान को दूषित करता था। तो बलराम जी ने बलबल का वध किया था, तो इनको इन सब नामों से पुकारा जाता है। धेनुकारी मुष्टिकारी कुंभारी स्वमेव ही रुक्मरी कूप करणारी कोटारी बलबल लांद कहा। अब इनका एक नाम है कालिंदी भेदन। कालिंदी भेदन, भेदन माने भेद करने वाले, उसको दो टुकड़े करने वाले। कालिंदी के कालिंदी मतलब जमुना जी। तो जमुना जी को बुलाया था जब, तो जमुना जी ने इनके आदेश का पालन नहीं किया, कह रही ये तो नशे में है, है ना। तो फिर उन्होंने हल से खींचा तो जमुना जी वहां जो है मुड़ी हुई हैं राम घाट में, जहां बलराम जी नाग कन्या गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। तो जमुना जी के दो टुकड़े उन्होंने कर दिए, तो दो धाराएं हो गई जमुना जी की वहां पर। तो इनको कालिंदी भेदन कहा जाता है और हस्तिनापुर करसक कहा जाता है। हस्तिनापुर करसक मतलब हस्तिनापुर को खींचा था उन्होंने, किस लिए? गंगा जी में डालने के लिए। पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में बहा देते, अगर दुर्योधन ने उनके शरण नहीं ली होती और माफी नहीं मांगी होती तो पूरा हस्तिनापुर को गंगा जी में बहा दिया होता उन्होंने, है ना। तो ये घटना कौन सी है? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब जो है, तो उन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण किया था। तो ये गलत नहीं था, क्योंकि क्षत्रियों में तो ये चलता है, बलपूर्वक अपहरण किया था। तो इन्होंने जो अन्याय से सांब को जो है कैद कर लिया, छह महारथी मिलकर के कैद कर लिया। तो भगवान कृष्ण तो युद्ध करना चाहते थे, बलराम जी का नहीं 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 दुर्योधन तो हमारा शिष्य है इसलिए हम समझा देंगे। तो समझाने के लिए आए थे बलराम जी, लेकिन दुर्योधन जो है ना समझा नहीं, मूर्ख था। तो फिर वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, उग्रसेन की निंदा करने लगा, कृष्ण की निंदा करने लगा और चला गया। तब बलराम जी ने कहा कि अरे ये मेरा शिष्य होकर के और कृष्ण की उग्रसेन की निंदा कर रहा है, अभी दिखाता हूं इसको मजा। तो हल से उन्होंने हस्तिनापुर की पूरी जो भूमि उखाड़ ली और उन्होंने खींचा, और जब देखा सब बड़े बड़े महल हैं, सब धराशायी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो मरता क्या ना करता। तो लक्ष्मणा को और साम को आगे लेकर आगे करके और लाए बलराम जी के ना चरणों में गिरे सब के सब और प्रार्थना स्थिति की। तो हस्तिनापुर करसक के लाते हैं बलराम जी और व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप द्विविध के विनाशक हैं। द्विविध द्विविधारी, द्विविध कौन है? हाँ, एक बानर था, एक बानर था, ये भगवान राम की सेना में था, सुग्रीव का मंत्री था द्विविध, लेकिन फिर असत संग से जो है ना इसका जीवन बहुत ही दूषित हो गया और ये आसुरी स्वभाव का हो गया द्विविध। तो फिर ये बलराम जी का बहुत अपराध करता है, तो बलराम जी इसका वध करते हैं। तो द्विविधारी और यादवों के स्वामी यादवेंद्र इनको कहा जाता है, और ब्रजमंडल के भूषण हैं, ब्रजमंडल मंडन इनको कहा जाता है। कालिंदी भेदनोसी तुम हस्तिनापुर कर्षक द्विविधारी यादवेंद्रो ब्रजमंडल मंडन। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले हैं, इनका नाम है कंस भ्रातृ प्रहंता। कंस का वध तो कृष्ण ने किया, इन बाकी जितने भाई थे कंस के, आठ आठ भाई थे, तो इनका वध बलराम जी ने किया। कंस भ्रातृ प्रहंता और तीर्थ यात्रा कर, इनका एक नाम है तीर्थ यात्रा कर, मतलब तीर्थ यात्रा करने वाले। तीर्थ यात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु, इनको दुर्योधन गुरु कहा जाता है, दुर्योधन के गुरु हैं और जगत के रक्षक हैं। कंस भ्रातृ प्रहंता थी तीर्थ यात्रा करा प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि जगत प्रभु। तो हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिशाओं में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फणीन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मुसलधारी हैं, मुसली इनको कहा जाता है, मुसली मुसल धारण करते हैं इसलिए मुसली। और कहा जाता है हली, हली हल धारण करते हैं। और बली कहा जाता है, मुसली हली बली, बली बल धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। जय जय अच्युत देव परात्परम स्वयं आनंद दिगंत गत श्रुत सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र वराय ते मुसलिने बलिने हलिने नमः। जो इस जगत में सदा इस स्तवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में से शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा, उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। ये जो स्तुति है इसका ये फल बता रहे हैं। यहे पठेन सततम स्तवनम तु यः सतुहरे परमं पदम आम्रजेन जगति सर्वबलम त्वरिमर्दनम भवति तस्य जयः सुधनम धनम। इसके बाद क्या हुआ, इतनी स्तुति करके व्यास जी ने सब मुनियों के साथ क्या किया, विशाल बुद्धि वाले मुनि सत्यवती कुमार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम करते हैं और 100 बार परिक्रमा करते हैं। बलराम जी जिस पालने में लेटे हुए हैं तो उस पालने को 100 बार प्रणाम किया उन्होंने और 100 बार क्या किया, परिक्रमा की। इसके बाद फिर वे अपने आश्रम में चले गए व्यास जी ने। बलम परिक्रम शतम प्रणम तैर द्वैपायनो देव पराशरात्मज विशाल बुद्धिर मुनिर्बाधरायण सरस्वती सत्यवती सुतो ययो। अब एक ऐसी घटना है जो कि हम लोगों ने सुनी नहीं है कभी। बलराम जी के द्वारा कोल देवते का वध हुआ है तो नारद जी सुना रहे हैं बहुलास को कि बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो जो सर्व पाप हारी पुण्यदायक और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। कोल नामक दैत्य से पीड़ित होकर बहुत से लोग दीनचित हो ब्राह्मणों के साथ कौसारवीपुर से मथुरा में आए। कौसारवीपुर एक स्थान है, वहां के राजा थे कौसारवी जो बलराम जी के बड़े भक्त थे। तो वहां कोल नाम के दैत्य ने कब्जा कर लिया और राजा अपने नगर से भाग करके दूसरे स्थान में जो है छिप करके रहते थे। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। तो ये घटना उस समय की जब बलराम जी मथुरा से निकले थे शिकार खेलने के लिए और रास्ते में वो सब जो है ना जो प्रजा कौसारवीपुर की जो प्रजा है वो ब्राह्मणों के साथ में बलराम जी से मिले। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु राम, हे महाबली देव देव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। तम नत्वाभ्यर्च्य विधिवन तदंग्रो पतिता भूतपति कृतांजलि पुटा ऊचुर हर्ष गंगदया गिरा। राम राम महाबाहु देव देव महाबल कोले ने पीड़िता सर्व आगता शरणम वयम। कोल दैत्य कंस का सखा है, कंस की मृत्यु हो गई इसलिए वो जो है और ज्यादा गुस्से में है, तो हमको बहुत पीड़ित कर रहा है ये जानकर कि हम लोग आपके भक्त हैं। तो कंस को आपने मारा है या कृष्ण ने मारा है, इस कारण से हम लोगों को बहुत दुख दे रहा है, कोल नाम का दैत्य। कंस का सका है वो महाबली दैत्य राजा कौसारवी को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा का नाम है कौसारवी और नगर का नाम है कौसारवीपुर, उस राजा के नाम से ही नगर का नाम है। अगर राजा बहुत ही शुद्ध होता है तो उसके नाम से ही नगर का नाम पड़ जाता है, है ना। तो कौसारवीपुर उस नगर का नाम था। राजा कौसारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय होकर आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। कौसारवि संभयान ही गंगा तीरम गतो नृपहां राज्यार्थम तत्पदाम भोजम भजते सुजितेन्द्रियहम। हे विभो आप उनकी सहायता कीजिए, हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। अभी तो बहुत दुख मिल रहा है। क्यों दुख मिल रहा है? क्योंकि कुल दैत्य शासन कर रहा है वहां, तो हम बहुत दुख पा रहे हैं। तत्सहायम कुरु विभो वयम यस्य प्रजा स्वभा पुत्रवन पालिता तेन महासौख्य समन्वितम। हे प्रभु अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है, यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि हे देवेश जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। कंस नहीं मरा जब तक वो जिंदा है तब तक आप मत समझो कि कंस मर गया, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। कंस के मरने से उसका गुस्सा उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। कोलाना कोलेना देव दुष्टेन पीड़िता सततम प्रभो त्रैलोक विजयी वीरा कंसोपि निहत स्वयं कोले जीवति दैतेन्द्र कोले जीवति देवेन्द्र कंसोपि नामृता स्मृतः रक्षार्थम सगुणोसी त्वं भक्तानां प्रकृति परहम। तो उनका ये वचन सुनकर के भक्तवत्सल भगवान बलदेव जी गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौसाम्बी नगरी को गए। वो जो नगरी है गंगा और यमुना के बीच में बसी थी। इति श्रुत्वा वचस्तेषां श्री रामो भक्तवत्सलः गंगा यमुनयोर मध्ये कौसाम्बीं नगरीं ययौं। अब बलदेव जी को युद्ध के लिए आया सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित होकर कौसाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वो सेना थी। वो सेना कोल दैत्य की जो सेना थी असुरों की सेना थी और 10 अक्षौहिणी सेना थी। तो कैसी है? प्रलय काल के समुद्र जैसी दिखाई दे रही। प्रलय काल का समुद्र बहुत भयानक होता है। एक नदी के समान वो सेना थी, उसमें चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंग माला थे, रथ और हाथी उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे दिखाई देते थे। उस भयानक नदी के समान सेना जो है बड़ी भयानक दिखाई दे रही थी। उस सेना को देख करके बलराम जी ने हल का सेतु बांध दिया। जैसे नदी को पार करने के लिए सेतु बांधा जाता है ना, पुल बांधा जाता है, तो बलराम जी ने उस नदी में जो है ना एक सेतु बांध दिया। सेतु मतलब पुल। तो हल को उन्होंने ऐसे किया तो पूरी सेना के आर पार वो हल चला गया। बलराम जी के हाथ में जो हल है तो जितना चाहे उतना वो बड़ा कर सकते हैं। तो हल को उन्होंने सेना के उस पार तक जो है ना फैला दिया अपना हल, तो सेतु जैसा बन गया उस सेना का। और हल के अग्रभाग से उस सेना को खींच खींच कर मूसल के प्रहार से मारना आरंभ किया। हल और मूसल, हल से खींचते हैं और मूसल से मारना शुरू कर दिया। बाएं हाथ में हल है और दाएं हाथ में मूसल है, तो खींच करके और मारते हैं। खींचते तो भाग नहीं सकता कोई। वीरावर्ताम चताम वीक्ष बद्वा से तुम हलम बल आकृष्यताम तदग्रेण मुसलेना हनन दृढ़।
उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर और घुड़सवार और रथी और हाथी सवार फलों की भांति पिसने लगे और करोड़ों की संख्या में सब ओर धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। अब पूरी सेना भाग गई, कोई भी बलराम जी के सामने रुक नहीं सकती है, तो अकेला वो आया युद्ध करने के लिए। शेषा प्रतुद्रुवरवीरा भयार्ता रण मंडला एकाकी युद्धे दैत्याः कोलो रामेण शस्त्रभृन्। अब उस दैत्य ने क्या किया, बलदेव जी की तरफ अपना हाथी बढ़ाया। अब वो हाथी बहुत भयानक था, उसके कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोला हुआ सिंदूर का लेप था, कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी, सोने के सांकल से युक्त गंड स्थल से मद बहा रहा था, चार दांत वाला हाथी था, घंटे की ध्वनि से वो भीषण बड़ा भयानक दिखाई देता था, उसका कद ऊंचा था और दिग्गज के समान से घाटता था, उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। तो उस हाथी में चढ़कर के बलराम जी के सामने आया वो, और उस कोल ने तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से हाथी पर चढ़ गया। अच्छा ठीक है, हाथी के ऊपर चढ़ गया। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मुसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। इंद्र का वज्र बहुत छोटा है और बड़े बड़े पर्वत चूर्ण हो जाते हैं, तो बलराम जी के मुसल के प्रहार से जो है ना उस हाथी की अब जो है क्या दशा होती है। आगतम वीक्षतम नागम मत्तम कोलेन नोदितम तथाढ़ मुसलेन असो वज्रणेन्द्रो यथागिनिम। तो उस मुसल के प्रहार से क्या हुआ, उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो जाता है। एक डंडा मारो मिट्टी के घड़े में जो सूखा घड़ा है तो कई टुकड़े हो जाते हैं, तो बलराम जी के मुसल के प्रहार से उसके सिर के कई टुकड़े हो गए उस हाथी के। कोल जो है ना, कोल दैत्य है, ये सामने आया बलराम जी के, और इसका जो है कैसा मुख है, सूअर के समान मुख है, सूअर के समान मुख है, लाल नेत्रों वाला वो असुर जो है हाथी से गिरा, उसने महात्मा बलदेव जी के ऊपर तीखा सूल चलाया, तब बलराम जी ने मुसल से मारकर उसके सूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। लाठी के एक प्रहार से कई बर्तन टूट जाते हैं, कांच के कई बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार से उसका जो सूल है वो कई टुकड़े हो गया। मुसले ने तदा राम तछूलम शब्दाचिनन काच पात्रम यथा बालो दंडे ने चा विदेह राण। तब उस दुष्ट ने हजार भार की लोहे की गदा हाथ में ली। हजार भार का मतलब 3,000 मन, लगभग 3,000 मन की गदा थी वो लोहे की। एक मन जानते कितना है, 40 किलो, या जो पुराना मन है वो 37 किलो का समझो, है ना। तो हजार भार का मतलब 100, 10 लाख किलो, 10 लाख किलो। हजार भार का मतलब एक कुंटल, एक भार का मतलब एक कुंटल समझो, है ना। तो हजार कुंटल की गदा थी वो। बलराम जी को उसने छाती पर चोट की और मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से बलराम जी तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता माला, अगर फूल की माला से हाथी को मारे तो हाथी को कैसा लगता है, कुछ नहीं लगता बलराम जी को कुछ नहीं लगा, हजार कुंटल की गदा का प्रहार किया, बलराम जी को कुछ नहीं पता चला उसका। वहां के सब लोग ये कौतुक देख रहे थे। तनगदाया प्रहारेण नाचचाल यदून वहां पश्यताम सर्वलोकानाम सजाहत एव द्युपहम। तब महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। बलराम जी के हाथ में जो मूसल था वो उसके सिर पर मार दिया। तमाम कृष्य हलाग्रेण कोलम कज्जलवत्तनुम मुसलेना हनन मोरनी बलदेवो महाबलहम। मुसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वो रण भूमि में गिर पड़ा। लेकिन अभी मरा नहीं, वो भी बहुत बलवान है। सिर फट गया और गिर गया तो भी उठकर के बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाई और अंतर्धान हो गया। अब वो जो है सामने से युद्ध नहीं कर सकता है, समझ गया कि अब किसी तरह संभावना नहीं है युद्ध करने की, तो अपनी माया से उसने युद्ध करना शुरू किया। तो क्या करता है, बलराम जी को मुक्के से मार करके अंतर्धान हो गया। मुसलाहत है मूर्धापी पतितो रणमंडले मुष्टिघातम घातयित्वा तत्रैवान्तरधीयते। अब उस मायावी ने अत्यंत भयंकर दैत्यों की माया प्रकट की। वो माया कैसी थी, तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित होकर प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया। सोचिए प्रलय काल के मेघों से बिल्कुल घोर अंधेरा। ये प्रलय काल के मेघ हैं, जो साधारण मेघ होते हैं उनसे कुछ अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा तो नहीं होता, आप सब देख सकते हैं सब कुछ। प्रलय काल के मेघों से पूर्ण अंधकार हो गया, घोर अंधकार हो गया। चकारे माया मायावी देते ही मति भीषणी प्रलय प्रभवैर मेघ महावात प्रणोदित अंधकारम प्रकुर्वद्भिर अभूदाच्छादितम नभाम। अब वो मेघ वर्षा करते हैं, किस चीज की, खून के बूंदों की वर्षा करते हैं। जपा के फूलों के समान खून के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद उन घनी भूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की, बहुत ही अशुद्ध वस्तुओं की वर्षा। क्या है, पीव मेदा विष्ठा मूत्र मदिरा और मांस की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मुसल को चलाया। ज्ञात्वा है तत्कृताम मायाम बलदेवो महाप्रभु शिक्षेप मुसलम दीर्घम परसैन्य विदारणम। अब वो जो मुसल था बलराम जी का वो कहां चला गया, आकाश में चला गया। वो मुसल समस्त अस्त्रों का घातक था, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातु का बना हुआ था। क्या क्या है मुसल, बलराम जी का जो मुसल है स्वच्छ है, अष्ट धातु का बना है और लंबाई उसकी 100 योजन की हो गई। बलराम जी जितना चाहे उतना लंबा कर दें उस मुसल को, तो 100 योजन की लंबाई हो गई। 100 योजन का मतलब कितना हुआ, 800 मील, 1200 किलोमीटर। बलराम जी के हाथ में जो मुसल था वो 1200 किलोमीटर लंबा हो गया। और उससे बलराम जी क्या करते हैं, उस मुसल से जो है प्रलय की अग्नि के समान वो प्रज्वलित होने लगा वो मुसल। सर्वास्त्र घातकम स्वच्छम अष्टधातो मयम दृढ़म सतयोजन विस्तीर्णम प्रलयाग्नि समय प्रभम। बलदेव जी का अस्त्र मुसल दसों दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उस मुसल ने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। मुसल में जो है प्रलय काल की अग्नि के समान तेज था, तो जितने बादल थे वो सब मिट गए, खत्म मुसल के द्वारा। बलाश्रम मुसलम रेजे ब्रह्मदत दिगंतरे विदारयन घनान व्योमनी निहारम चायथा रविहीन। उस मुसल को आकाश में गया हुआ देखकर भगवान बलभद्र ने सोचा हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाता है उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। वो जो कोल देता था वो बहुत बड़े शरीर का था, बलराम जी बहुत छोटे हैं उसके शरीर की तुलना में, तो यहाँ पर तुलना की गई बालक रुई के ढेर को घुमाता है। रुई का बहुत बड़ा ढेर हो तो बालक तो उठा ले घुमा सकता है ना, है कि नहीं। रुई बहुत हल्की होती है तो उसका इतना बड़ा शरीर था, बलराम जी ने उसके हाथों को पकड़ करके ऐसे घुमाया जैसे बालक रुई के ढेर को घुमाता है और फिर पृथ्वी पर दे मारा, कैसे जैसे बालक कमंडलू को पटक देता है ऐसे उसको गिराया। भ्रामयन बाल एवतम प्रतोलम चाय सतहम पाते जामा से भूपृष्ठ है कमंडलुम एवार भकहम। उस दैत्य के गिरने से क्या हुआ, पूरा भूमंडल, सोचिए वो जो असुर था वो बहुत भारी था, जब असुर गिरा तो पूरा भूमंडल पर्वत समुद्र और वन के साथ पूरा भूमंडल एक घड़ी तक कांपता रहा। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, 24 मिनट तक जो है पूरा भूमंडल कांपता रहा जब वो गिरा। तस्य पातेन साभिशैल वने सह चकंपे नाडिका मात्रम सर्वभूखंड मंडलम। इससे दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए, वो मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कुल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। भग्न दंतस चलन नेत्रों मूर्छितो निधनम यो कोलो नाम महादैत्यो वृत्रो वज्र हतो यथा। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कुल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौसाम्बीपुरी राजा कौसारवि को दे दी और स्वयं गर्ग आदि गर्गाचार्य आदि के साथ गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। उनका ये कार्य समस्त दोषों के निवारण के लिए और लोक संग्रह के लिए था। बलराम जी दान देते हैं ब्राह्मणों को तो ये जो है उनके लिए कुछ लाभदायक नहीं है, ये किस लिए, लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए है। स्ना तुम भागीरथीं प्रागान गर्गाचार्य आदि भीर्भृतः लोकानां संग्रहं कर्तुं सर्वदोषाय क्षयाय च। गर्ग आदि ब्राह्मणों आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बलराम जी को गंगा में स्नान करवाया और बलराम जी ब्राह्मणों को दान देते हैं। कितना दान देते हैं, 100,000 हाथी, 200,000 रथ। बलराम जी का दान सुनिए कितना दान है, 1,00,00,000 घोड़े और 10 अरब। 10 अरब क्या है, दुधारू गौएं, 10 अरब दुधारू गौएं और 100 अरब रत्न और जाम्बूनत सुवर्ण के 1 भार दान में देकर मथुरापुरी को चले आए। स्नापयाम क्रूरार्यास ते गंगायां माधवं बलं वेद मंत्रेर मंगलेश्चा गर्गाचार्यादयोद्विजं लक्षं गजानां वैदेह चन्दनानां दुलक्षकं हयानां च तथा कोटिं धेनूनां मर्बुदं दशं शतार्बुदं च रत्नानां भारं जाम्बूनदावृतं रामो दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रेयो मथुरां पुरीं। बलराम ने गंगा जी में जहां स्नान किया उस घाट को विद्वान लोग राम तीर्थ कहते हैं। राम तीर्थ वो महापुण्यमय है जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा और कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वो हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त करता है। यत्र रामेण गंगायाम कृतम स्नानम विदेहराट तत्र तीर्थम महापुण्यम राम तीर्थम विदुर्बुधा कार्तिक्याम कार्तिके स्नात्वा राम तीर्थे जाहनवीम हरिद्वारा शतगुणम पुण्यम वैलभते जनहम। अब ये कोल देते जो है ना ये है कौन वास्तव में? देखिए वैष्णवों के अपराध से जो है मतलब क्या दुर्दशा होती है, वैष्णवों का अपराध करने से क्या दुर्दशा होती है ये जो है ना हमें शिक्षा मिलती है। ये कोल देते जो है ना ये था क्या, ये बंग देश में दृढ़ास्व नाम के राजा थे। आप समझे, बंग देश में दृढ़ास्व नाम के राजा थे। वे लोमस मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाते थे, इससे उन महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया। आप समझे, कोल देते पूर्व जन्म में क्या थे, बंग देश के दृढ़ास्व नाम के राजा थे। और किसको देख करके हंसता था, वो लोमस मुनि को कुरूप देख करके हंसता था। तो सांप दे दिया, ओ महादुष्ट तू विकराल सुअर के मुख वाला असुर बन जा, तू कुरूप बन जा। तो सुअर के मुख का जो ना असुर ये कोल देते बना गया। इस प्रकार मुनि के सांप से राजा दृढ़ास्व कोल नाम का असुर हो गया। दृढ़ासो बंग राजो भून कुरूपम लोमसम मुनिम दृष्ट्वा जहां से सततम सतापे सा महामुनि विकराल क्रोध मुखो सुरो भव खल महाखल इत्थम सा मुनि शापेन कोला क्रोध मुखो भवन। अब बलदेव जी के प्रहार से आसुरी शरीर छोड़ करके महादेत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। बलदेव प्रहारेण त्यक्त्वा स्वाम आसुरीं तनुं कोलो नामे महादैत्यः परम मोक्षम जगामः। इसके बाद फिर बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हैं। उद्धव जी आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से जहनू तीर्थ को गए जहां जहनू के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। जहनू तीर्थ और गंगा जी को जाने भी कहा जाता है। वहां ब्राह्मणों को दान देकर के रात भर वहीं रहे। इसके बाद वहां से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान है, आहार नामक स्थान है, जहां पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहां ब्राह्मणों को दान दिया, उत्तम गुणकारक भोजन देकर के वहां से 1 योजन दूर मंडूक देव के पास गए। मंडूक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उस स्थान में मंडूक देव नाम के ऋषि थे। उस बलराम जी के लिए जो है अच्छा बलराम जी उसको दर्शन देने के लिए अपने समाज के साथ गए। और वो जो है मंडूक देव जो ऋषि थे वो कैसी तपस्या कर रहे थे, मुंह ऊपर को किए एक पैर के बल पर खड़े थे वो। बलराम जी के दर्शन करने के लिए क्या कर रहे थे, वो एक पैर पर खड़े होकर के और मुंह ऊपर की तरफ किए हुए थे। उनके नेत्र ध्यान में निश्चल थे, हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उनके साक्षात दर्शन के लिए वो लोलुप थे। तपस्तप्तम महत्तेन चांते देव कृपाप्तये तदर्थम स्वासमाजे न बलदेवो जगामहम ऊर्ध्वास्व मेघपादस्थम ध्यानस्थिमित लोचनम स्वभक्तम हृदयस्थम सम्मूर्ति दर्शन लोलुपम। अब उन्होंने क्या
हृदय में दर्शन कर रहे थे बलराम जी का, तो उनको पता नहीं चला कि साक्षात बलराम जी आ गए हैं। तो अब बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी तो उनसे मिलना चाहते हैं, तो बलराम जी ने क्या किया, उनके हृदय से अपने स्वरूप को हटा लिया। बलराम जी ने क्या किया, अपना स्वरूप उनके हृदय से हटा लिया। तब उन्होंने नेत्र खोले, जब हृदय में जो ध्यान कर रहे थे वो मूर्ति नहीं दिखाई दी, तो आंखें खोली। जब आंखें खोली तो क्या देखा, साक्षात बलराम जी हैं। साक्षात नेत्र खोल करके देखा, अनंत देव के परम सुंदर रूप को देखा। ताम जहारे तदानंत तदो बाहे ददर्शः सदृष्टानंत देवस्य रूपम परम सुंदरम। बलराम जी कैसे हैं, वनमाला से सुशोभित हैं और एक कान में कुंडल धारण करते हैं। बलराम जी की विशेषता है, उनके एक कान में कुंडल रहता है। उनकी अंग कांति गौर थी और ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। आनंद देव की उस परम सुंदर रूप को देखकर उन्होंने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। कौन से ऋषि हैं ये, कौन से ऋषि हैं बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं जो, अभी मैंने बताया कई बार नाम दिया, कौन बताएगा, मंडूक देव नाम के ऋषि हैं। बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की, फिर वो अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। सृग्वे कै कुंडलम गौरम तालां कै रतः संयुतम स्तुत्वा परमया भक्त्या पपाते चरणो पुनः। बलदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा वर मांगो। तब वे बोले स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए। क्या वरदान मांगा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो क्या दीजिए मुझे, सुखदेव जी के मुख से निकली सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए जो समस्त कली दोषों का विनाश करने वाली और श्रेष्ठ है। तस्य शीर्षणी करम दत्वा वरम ब्रूहि त्युवाच यदि प्रसन्नो भगवान अनुग्राह्यो अस्मि मायतीं सर्वोत्तमां भागवतीं संहिताम सुखे वक्रतः निर्गताम देहि मे स्वामिन कलिदोष हराम पराम। तो बलदेव जी ने कहा कि हे निष्पाप, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद भागवत की संहिता प्राप्त होगी। आगे चलकर के उद्धव जी के द्वारा तुम श्रीमद भागवत श्रवण करोगे, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमद भागवत का कीर्तन कलयुग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कीर्तन तो कई प्रकार के हैं, श्रीमद भागवत का कीर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्धवान वारे तहा प्राप्तिर भविष्यति तमानघ श्रीमद भागवती कीर्ति रधिका या कलो युगे। तो बलराम जी कहते हैं कि उद्धव जी मेरे साथ हैं, तुम इनका दर्शन कर लो, ये उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सकता। उद्धव जी के मुख से तुम्हें श्रीमद भागवत आज तो नहीं प्राप्त होगी, लेकिन कब होगी कैसे होगी वो सब बलराम जी फिर आगे चल करके बताते हैं। और भागवत महात्म्य में आता है कि उद्धव जी कुसुम सरोवर में प्रकट हुए और कृष्ण की पत्नियों को, जो कृष्ण का वियोग था, तो कृष्ण के वियोग को दूर करने के लिए एक महीने तक श्रीमद भागवत सुनाते हैं उद्धव जी। तो उस समय जो है ये जो मंडूक देव हैं वो भी उद्धव जी के मुख से श्रीमद भागवत सुनते हैं। तो बलराम जी कहते हैं तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मंडूक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। अब शुद्ध शयन नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है जो कंटक तीर्थ से उत्तर की ओर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा पर विद्यमान है। तो वहां ठहर करके बलराम जी दान पुण्य में लग गए। बलराम जी का बहुत दान पुण्य होता है। क्या दान करते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां 10,000 घोड़ों का दान किया, 100 रथों का दान किया, 1,000 हाथियों का और 10,000 गवों का दान किया।
शयने नगराच्छोद्धाम ईशान्याम दिशि संस्थितम स्थानम गंगा तटे रम्यम कंटकादुत्तरे भवन पुष्पवत्या दक्षिणे तु क्रोशैकम विस्तरेण चा तत्र संकर्षणो देवा स्थित्वा दान पर्वभवन घोटकम दश सहस्रम रथानाम शतकम तथा द्विपम सहस्रम गाश्च वेम दिक्सहस्रम दधो मुदाम।
वहां समस्त देवता और तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए, उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। तत्र संकर्षणम देवम पूजयामासु राधरात देवासमायु सर्वे ऋषियश्चा तपोधनम। फिर इस प्रकार स्तुति की, बलराम जी की स्तुति करते हैं सब ऋषि मुनि। क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप कोलेश जत्य के हंता हैं और धेनु का सुर का विनाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे हरायुध, आपको प्रणाम है। मुसलास्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप, आपको प्रणाम है। ताल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। नमः कोले से घाताय खरासुर विघाति ने हलायुध नमस्ते सु मुसलास्त्राय नमः। नमः सौंदर्य रूपाय तालांकाय नमो नमः।
उन सबके द्वारा की गई इस स्थिति को सुनकर शंकरसन बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वो वर मुझसे मांगिए। बलराम जी किन से बोल रहे हैं कि वरदान मांगो? किन से बोल रहे हैं कि वरदान मांगो? हरि बोल। कई लोग सोता हैं, श्रोता बहुत थोड़े हैं, सोता ज्यादा है। कौन है श्रोता जो बताएंगे? बलराम जी किससे कह रहे हैं बलराम वरदान मांगो? मांडूक ऋषि सो रहे हैं आप लोग। मांडूक ऋषि की तो बात बहुत पहले चली गई। किससे कह रहे हैं बलराम जी वरदान मांगो? सब ऋषि मुनियों से। दुनिया भर के ऋषि मुनि आए हैं बलराम जी का दर्शन करने के लिए। सब ऋषि मुनियों से कहते हैं कि वर मांगो। तो जितने ब्रह्मर्षि और देवता हैं वे सब बोले, हे भगवान, जब जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें। देखा क्या वरदान मांगा? ये सोचना चाहिए कि किसने कैसे कैसे वरदान मांगे भगवान से। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि जब जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब तक आपकी आज्ञा से हमारी समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। ये वरदान मांगा। ये वरदान होना चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत संसार क्या है, पदम पदम निर्द्विपदम। तो ये जो है भौतिक संसार, ये है संसार, इसमें महाघोरे महाभयानक संसार है। यदा यदा वयम मुक्ता स्मरामो भवतः पदम सर्व बाधा विनिर्मुक्ता भवामश्चा तवाज्ञया। बलराम जी ने कहा, जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करोगे, तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। ये मेरा सत्य वचन है, बलराम जी ने कहा है। यदा यदा माम स्मरत है तदाहम शरणागताम रक्षिता स्मृश्याम कलौ नूनम इति सत्यम वचो मम। इस स्थान पर इन मुनियों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया। वो स्थान कितना महत्वपूर्ण है, जहां मुनियों ने पूजा की बलराम जी की और वरदान प्राप्त किया है। इसलिए कलयुग में ये तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। अत्र स्थले वरम प्राप्तम पूजितम मुनिपुंगवे अतः संकर्षण स्थानम भविष्यति कलयुगे। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा और वे शुभ गति प्राप्त करेंगे, अथवा उनके मन में कोई अभीष्ट होगा तो उस अभीष्ट को प्राप्त कर लेंगे। अस्मिन् यस्मिन् स्नास्यन्ति गंगायाम देवान् संपूजयन्ति दास्यन्ति दानं विप्रेभ्यो भोजनं कारयन्ति विष्णुं संपूजयन्ति स्मे सफलं जीवितं चिताम तेयान्ति देवतस्थानं कामी प्राप्नोति कामनम। इसके बाद बलराम जी
सबके साथ अपने पुरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, जो सुनेंगे क्या, जो सुनेंगे जो सोएंगे नहीं, जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। तथा परि व्रतो राम स्वाम पुरीम संजगामः कोल रक्षो वधम कृत्वा स्नात्वा विष्णु पदी जलिम रामस्य बलदेवस्य कथाम या शृणुयान्नरः सर्व पापे विनिर्मुक्तः सयाति परमां गतिम। इनका प्रश्न है कि इन्होंने सुना है कि सोते हुए कान में आवाज आती है। हाँ, कान में आवाज आती है, आवाज तो सब जगह जाती है, आवाज कहाँ नहीं जाती, हर जगह जाती है, लेकिन वो जो जीव है ना वो नहीं सुनता है ना, तो उसको कोई लाभ नहीं होता, ठीक है ना। अगर सो गए, सोया तो खोया, कहते ना जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बाद में कहा था और उन्होंने ये वर मांगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई भागवत मुझे चाहिए, तो इसका क्या उत्तर है? इसका एक उत्तर तो यह है कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत बाद में कही, लेकिन ये प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत सी घटना ऐसी है जो पहले से ही प्रकाशित हो जाती है कि ऐसा होना है, और जो मांडूक मुनि है तो वो चाहते हैं उस भागवत को सुनना, क्योंकि ये बात निश्चित है। जैसे परीक्षित महाराज को भी जो उद्धव जी ने कह दिया था, उद्धव जी ने कहा था कि क्योंकि उद्धव की श्रीमद् भागवत है वो परीक्षित नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उद्धव जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए सब दिशाओं में जो है अपना शासन करिए, जिससे कलयुग इस स्थान में ना आ पाए। तो परीक्षित महाराज को दिग्विजय के लिए जाना पड़ा, तो उद्धव जी की जो श्रीमद् भागवत एक महीने की थी वो परीक्षित नहीं सुन पाएंगे। तो उद्धव जी कहते हैं कि तुम तो सबसे ज्यादा अधिकारी हो श्रीमद् भागवत के, क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारे संरक्षण से ये जितने लोग हैं ये भागवत सुनेंगे और कलयुग यहां नहीं प्रवेश कर पाएगा, तो इसलिए तुम तो सबसे ज्यादा अधिकारी हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, साक्षात सुखदेव गोस्वामी के मुख से तुम श्रीमद् भागवत श्रवण करोगे और सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो श्रीमद् भागवत निकलेगा वही भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध होगा। उद्धव जी ने जो श्रीमद् भागवत सुनाया वो कोई नहीं जानता, एक महीने तक जो सुनाया, सुखदेव ने जो परीक्षित को सुनाया वो श्रीमद् भागवत है जो भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत के नाम से जाना जाता है। तो मांडूक मुनि ने जो प्रश्न किया है, क्योंकि ये घटना बहुत पहले से ही प्रकाशित हो गई कि ऐसा होना है। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। श्री बलदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे।